ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, इतर्जो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः।
उपस्थित प्रोग्रमी सज्जनों, सदा भक्तिमती माताओं,
प्रसंग यह चला। श्रीमद् भगवद गीता के तेरहवें अध्याय का पहला श्लोक है, श्री भगवान की वाणी है। श्री भगवान हुआ सो, श्री भगवान बोले हो, और कोई नहीं बोलता है। कौन बोलता है? भगवान बोलते। क्या बोलते भगवान? भगवान बोलते हैं, हे कुंती नंदन, मेरे प्यारे भाई अर्जुन, इस शरीर को तू खेत समझना। संतों ने, विद्वानों ने, महापुरुषों ने इस शरीर का नाम खेत रखा। इदम शरीरम कुंतया क्षेत्रम इति अभिधीयते। और एक खेत को जो जानता है उसका नाम है क्या? क्षेत्रज्ञ। और एक क्षेत्रज्ञ कौन है? आगे का श्लोक बोलेगा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। खेत बहुत है तुम्हारे पास, देखो जमींदार है ना, जमींदार के पास खेत बहुत होते हैं। आप भी जमींदार हो, आपके पास खेत बहुत है। इसलिए भगवान ने बोला, सर्व क्षेत्रेषु, सब खेतों का मालिक एक ही है, पर एक मालिक होता हुआ भी भिन्न भिन्न दिखता है। खेत जो है ना, खेत भिन्न भिन्न है तो मालिक भी भिन्न भिन्न होगा कि एक होगा? खेत नाना होने पर भी फैक्ट्री बहुत खुलो, पर मालिक तो एक ही है। तो भगवान कहते, सर्व क्षेत्रेषु भारत महामेव क्षेत्रज्ञम विद्धि, सब खेतों का मालिक मैं ही हूं। बस अब मेरे को जानो, माम विद्धि, मुझको जानो। क्या जाने? खेत का मालिक। तुम खेत का मालिक नहीं हो, तुम खेत का मालिक नहीं हो, पर हम खेत को जानते, मालिक को नहीं जानते। हम किसको जानते हैं? खेत को जानते, मालिक को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कारण क्या है? सब पक्का हो गया, ऐसा होना सही नहीं। क्षेत्रम जानाते थे क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला का नाम क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रम जानाते थे क्षेत्रज्ञ, कहा सा क्षेत्रज्ञ, वह क्षेत्र का कौन है? तो भगवान कहते, माम विद्धि, तुम मालिक नहीं हो, मैं मालिक हूं। तुम अपने को खेत का मालिक समझ करके चल रहे हो ना, पर तुम मालिक नहीं हो, मालिक तो मैं ही हूं। अभी देखो भगवान यहां कितनी बढ़िया बात जो है ना ज्ञान कांड में चालू किया है। भगवान कहते, तुम अपने को जानो और रामर को जानो। ऊपर बैठी बैठी तो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, सभी खेतों का मालिक मैं हूं। और तुम अपने को मालिक बन करके बैठे हो, ये गलत है। हम अपने मन से पूछते, तू मालिक किसको मानता है? मन से पूछो, क्षेत्रज्ञ को मानता है कि खेत को मानता है? क्षेत्रज्ञ मन कहता है कि हम तो खेत को मानते हैं। मन कहता है हम खेत को मानते हैं। बोले क्यों? बोले खेत को हमने कभी देखा नहीं। खेत को क्यों मानूं? जो जिसके संबंधी होता है ना, उसको उसके पास जाना पड़ता है। खेत और मन दोनों में क्या संबंध है? अथवा खेत, मन और क्षेत्रज्ञ में क्या संबंध है? तीनों का क्षेत्रज्ञ के साथ मन के साथ क्या संबंध है? क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा है, मालिक है, इस मालिक के साथ तुम्हारा क्षेत्रज्ञ या मन के साथ क्या संबंध है? ये पूछते हैं हाँ? वो तो क्षेत्रज्ञ तो है ना, क्षेत्रम जानाते थे क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ जो जानता है, क्षेत्र को जो जानता है, उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। और ये शास्त्रकार कहते क्षेत्रज्ञ को जानो, तो क्षेत्रज्ञ को जानेगा कौन? किस रूप में जानेगा? खेत के हम तो खेत को जानते हैं ना क्षेत्रज्ञ के रूप में। शरीर को तो जानते ना, अहम 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 कर हम तो देह में लटक गए ना। देह के भीतर आप जाना नहीं चाहते, तो देह के भीतर तो दूसरा देह है, उसका तो मालिक बन करके बैठा है मणिराम। और मणिराम से पूछते हैं तू क्षेत्र के स्वरूप आत्मा को क्यों नहीं मानता है, क्यों नहीं जानता है, उधर क्यों नहीं जाता है, वो खेत को ले क्यों लपट पड़ता है? मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, ऐसा क्यों करता है? तो मन पूछता है क्षेत्रज्ञ जो है ना आत्मा, मेरा क्या लगता है, क्या लगता है? तो मन से पूछा गया तो खेत क्या लगता है तेरा? बोले खेत मेरा संबंधी है। हाँ तो मन कहता है कि खेती यदि कर, खेत जो है मेरा संबंधी है। क्यों? इसके विचार करो, खेत जिससे बना है तो मन भी उसी से बना है। मन किससे बना? पांचों भूतों के सत्व अंश से। और खेत किससे बना? पांचों भूतों से। खेत जो बनाना शरीर, खेत माने शरीर, तो शरीर किसी बना? पांचों भूतों से। और मन किसी बना? पांचों भूतों के सत्वांश से। तो एक है बड़ा भाई और एक हुआ छोटा भाई। बड़ा भाई कौन हुआ? मन। क्यों? सत्वांश से बना ना। और तमगुण से बना हुआ क्या? शरीर। ये छोटा भाई है। तो बड़ा भाई क्या? छोटा भाई के साथ क्रीड़ा करना अच्छा लगता है, खेलना। बड़ा भाई क्या कहते ना, वैसे भी व्यवहार में भी देखने में आता है। यदि एक ही लड़का है तो लड़का बोलता है मम्मी मेरे को बहन चाहिए, भाई चाहिए, मैं अकेला कैसे खेलूं? बोलता है कि नहीं? हमको एक भाई चाहिए, भाई चाहिए, और अथवा बहन चाहिए, जिसको जैसा आवश्यकता है समझे। क्यों? क्रीड़ा के लिए दो चाहिए, एक से क्रीड़ा नहीं होती है। ऐसे मन का एक छोटा भाई है, उसका नाम है भूत। पांचों भूत से बना हुआ है शरीर। इस शरीर का नाम खेत है। अब मन जो है खेत की तरफ, छोटा भाई की तरफ दौड़ता है खेलने के लिए, परमात्मा की तरफ, क्षेत्रज्ञ की तरफ जाना नहीं चाहता है। तो तू संसार के या विषय की तरफ अथवा संसार की तरफ अथवा खेत की तरफ क्यों जाता है? कोई खेत में बहुत फल लगता है, खेत में बहुत लगता है, लगता है कि नहीं? क्या क्या बोते हैं? तो खेत में बहुत चीज खाने को मिलता है, पर क्षेत्र का तो कुछ नहीं है। क्षेत्रम के किम जानामि क्षेत्र, कसम जानामि क्षेत्रज्ञम। क्षेत्र को हम जान करके करेंगे क्या? क्यों जाने हम? जिससे हमको खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, उसी की तरफ जाना चाहिए ना। तो मनीराम जो कहता है हम किस खेत की तरफ जाते इसीलिए कि हमको खेलने के लिए मिलता है, क्रीड़ा करने के लिए मिलता है, जो सब सुविधा है। और क्षेत्रज्ञ जो है परमात्मा है, परमात्मा हमको क्या देगा, परमात्मा हमारा क्या लगता है? तुम कुछ भी करो, परमात्मा भजन करो, कुछ भी करो, जब समय आवे ना वो परमात्मा को मंदिर में बंद करके रख दोगे तो कपड़ा तू सो जाओ, तब तक मैं काम करके आता हूं। जाओगे कि नहीं जाओगे? तो फिर तो परमात्मा के साथ क्रीड़ा करने का बनता नहीं, किसको? मनीराम को। तो मनीराम संसार के विषय की तरफ जाता है। मनीराम ईश्वर जो है क्षेत्र का परमात्मा हमारा क्या लगता है, पूछता है मन, मन क्या लगता है? कोई कुछ नहीं लगता है। तो जिसके साथ जिसका संबंध होता तो जाएगा ना। तो संसार जो है, विषय जो है, पंचभूत से बना हुआ जो शरीर है, खेत है, ये खेत के तरफ ही मनीराम जाता है। दूसरी एक बात मनीराम बतलाता है, मन कहता है कि ये महात्मन आप जो बोलते हो परमात्मा की तरफ जाने के लिए, ये परमात्मा ने मेरा जो है ना, मेरी जो माँ है, प्रकृति है माया है, माया को दासी बना करके रखा है। माया जो है परमात्मा की पत्नी कौन है? माया क्या हो, माया का काम धनु वत्स जीवेश्वर हो यथेच पिबताम द्वैतम अद्वैतम परमार्थ। माया नाम के काम धेनु है, माया नाम के, और बसड़ा जीवेश्वर है, वत्स जीवेश्वर हो यथेच पिबताम द्वैतम अद्वैतम परमार्थ। तुझे माया है, मेरी माँ है, कौन बोलता है? मन। मन क्यों? मन का सात्विक अंश से बना हुआ, या मन प्रकृति के सात्विक अंश से बना हुआ है ना, सत्व अंश से बना हुआ ना, इसीलिए मन का माँ कौन हुआ? माया। मेरी माँ को ईश्वर ने, क्षेत्र के परमात्मा ने दासी बना करके रखा है, और जब चाहे तब काम लेवे, जब चाहे तब ऑर्डर देवे, ये काम करो, ये काम करो। सृष्टि रचना करना है बोलेगा माया से, तो मायाम तो प्रकृति विद्या, माइनम तो महेश्वरम। तो माया को प्रकृति समझो और महेश्वर को, परमात्मा को, क्षेत्र को महेश्वर समझो। ऐसी जो माया है, मेरी माँ है, माया को कहते हैं माया जगत बनाना है, तो माया को कह दिया कृष्णा को गोकुल ले जा, वहां रख करके चले आना, भगवान को कहां ले गया, छिपा दिया कहा? गोकुल ले गया। माया को कहा ये फलाना काम कर, फलाना काम कर, तो माया को करना पड़ता है कि नहीं? तो माया जो है परमात्मा के दासी बन करके परमात्मा के असर रहती है। तो मैं जाऊं तो मेरे को भी दास बना देगा, काम लगा देगा, इसीलिए मैं उधर नहीं जाता हूं। दूसरी बात मन कहता है, एक बात और बल रहा है, क्योंकि परमात्मा की तरफ जाता हमको रस नहीं मिलता है। तो पूछता है तू तो संसार के तरफ जाता है तो तेरे को क्या मिलता है? तो मेरे को रस मिलता है। जहां जहां तुम ममता करोगे वहां वहां तुमको रस मिलेगा कि नहीं? निर्मम में रस कहाँ है? ममता में रस है कि नहीं? बच्चे से प्यार करते हो तुमको रस आता है, तभी करते हो, नहीं तो करेगा? जहां जहां तुमको अच्छी लगती हैं बातें वहां वहां तुम रम जाते हो और जहां अच्छा नहीं लगता तो हट जाते हो। तो ऐसे मन कहता है कि हम परमात्मा की तरफ जाते हो उसमें रस नहीं मिलता है। क्यों रस नहीं मिलता है? कब परमात्मा सूखा रूखा सूखा है, कब ब्रह्मचिंतन क्या करेंगे, ब्रह्म से कर रस थोड़े है। ब्रह्मचिंतन करते करते हम ब्रह्मास्म चिंतन करते करते क्या मिलता है? नहीं जाते फास्टिंग खत्म हो जाता है, लास्टिंग आ जाता है। तो देखो रस नहीं मिलता है। तो कारण क्या है? कहते परमात्मा में रस नहीं है, भजन में रस नहीं आता है। तो भजन करते करते आंगुली में वो पड़ गया, चिन्ह पड़ गया, दाग पड़ गया, परंतु परमात्मा का कुछ आता पाता नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ले ले तेरे कंठी माला। तो बात ऐसी बात नहीं है, परमात्मा में रस नहीं है, ऐसी बात नहीं। परमात्मा तो रसवई शाह, रसम ये लब्ध आनंदी भवती, रसवई शाह श्रुति कहती है, रसवई शाह रसम ये लब्ध आनंदी भवती। इस परमात्मा को रस प्राप्त करके तो सब आनंदित हो जाता, सारे संसार परमात्मा के रस से रसीभूत हो गया। तो हमारे मन को क्यों नहीं लगता है? कर देखो दो तरफ दो वस्तु है, एक तरफ गुड़ का ढेला है और एक तरफ अंगार है। अंगार समझो ना, कोयला जलता हुआ कोयला। दो तरफ दो वस्तु रखी गई है, है नहीं बात? और एक मक्खी उड़ करके आती है, तो मक्खी किस में बैठेगी? अंगार में बैठेगी, गुड़ में बैठेगी? क्यों? गुड़ में बैठेगी। क्यों? गुड़ में उसको रस मिलता है, गुड़ में। और अंगार में बैठेगा तो राम नाम सत हो जाएगा, ठेठे नहीं चल पड़ेगा। रस और रस नहीं होने से मक्खी जो है ना उसमें अंगार में नहीं बैठेगी, गुड़ में बैठेगी। तो ठीक इसी प्रकार समझना, तुम्हारा मनीराम मन रूपी मक्खी किधर बैठेगी? अरे मनीराम मरिए मन रूपी मक्खी उड़ करके आएगा, अंगार में बैठेगा, गुड़ में बैठेगा, ये बताओ क्यों? अंगार में क्यों नहीं बैठेगा? मन अमनीभाव हो जाता है। अंगार में बैठेगा ना, परमात्मा में बैठेगा तो मन क्या बनेगा? मन अपने स्वरूप से नाश हो जाएगा। और गुड़ में बैठेगा रस आएगा, गुड़ में बैठेगा ये गुड़ा संसार विषय। तो विषय रूपी गुड़ में बैठेगा तो मनीराम को रस तो मिलेगा, पर ऐसे चिपक जाएगा फिर उड़ नहीं पाएगा। ऐसा बैठेगा, ऐसे बैठेगा, वहां से उड़ना चाहे तो उसीलिए बोलते ना मक्खी बैठे सर पे, मक्खी बैठी सर पे, लालच बुरी बला है, उड़ने की चिंता बड़ी पंखा गए लपटा है। मक्खी सर में बैठता है ना, सर माने गुड़ समझ लेना। कैसे तो समझो, दो मक्खी, एक का नाम अधीर मक्खी और एक का नाम धीर मक्खी। अधीर मक्खी और धीर मक्खी, चतुर्मक्खी समझो, एक अधीर मक्खी है एक चतुर्मक्खी। जंगल में रहती थी तो दोनों में बड़ी मित्रता थी, दोनों साथ साथ रहते और फूलों का रस पान करते थे, शांति से रहते थे। एक बार अकाल पड़ा, अकाल पड़ा तो वर्षा हुई नहीं, फूल खिला नहीं, वो मधु बना नहीं, तो भूखा भूखा कुछ दिन रहा। तो बोला भाई दोनों चलो शहर के तरफ। तो शहर में आया, कहाँ देखा तो एक बनिया के दुकान के सामने पिघला हुआ गुड़ का वो हांडा था। तो देख करके दोनों बड़ा प्रसन्न हो गया, वाह मिल गया मिल गया मिल गया। खूब पेट भर के खाऊं, पेट भर के खाऊं, अन्य बात दोनों ने ऐसा विचार करके आया। तो जो अधीर था, अधीर भाग की था, वो गुड़ के बीच में जाकर बैठा, पिघला हुआ गुड़ था ना, साथ में बीच में समझो साथ के बीच में बैठ गया। तो बीच में बैठ गया तो गुड़ तो खाया पर उनको पंखा चिपक गया, चिपक गया। पर वहां राम नाम और दूसरा ने सोचा मेरे साथी तो गया, अब हमको भी गुड़ खाना है, घर वापस जाना है, जंगल जाना है, तो क्या करो। तो गुड़ के हंडा के किनारे बैठता है और ऐसे ऐसे छोटे छोटे पंखों से, टांगों से गुड़ खींचता है, मरसात खींचता है, खाता है, खाता है, खाता है और पेट भरता है और दोनों टांगों से अच्छे ढंग से उड़ करके अपना गांव चला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार अधीर मक्खी की जगह में अविवेकी मनुष्य समझ लेना और चतुर्मक्खी की जगह में विवेकी समझ लेना। अधीर मक्खी की जगह में किसको समझोगे? अविवेकी। और चतुर्मक्खी की जगह में विवेकी। दोनों संसार में है, दोनों संसार में रहते हुए दोनों को विषय चाहिए, परंतु अधीर मक्खी क्या करेगा? विषयों में आसक्त होकर के मारे जाते हैं, आसक्त होकर के। क्यों? विषय में एक बार आसक्ति हो गई तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। और जो चतुर्मक्खी था वो विवेकी, तो विवेकी को भी संसार में रहना है, अविवेकी को भी रहना है, तो रहने रहने में अंतर आएगी नहीं? तो अब विवेकी पुरुष क्या करेगा? धीरे धीरे संसार के विषयों में रहेगा, जैसे पानी में नौका रहता है वैसे ही संसार के विषयों में चतुर्मुखी विवेकी पुरुष रहेगा, विषयों का व्यवहार करेगा, पर व्यवहार करता हुआ भी किसी विषय में आसक्ति नहीं होगी, असंग रहेगा। असंगो हम अनंगो हम, मैं असंग हूं अनंग हूं, निरपेक्ष हूं निर्विकार हूं निराकार हूं, ऐसे करके विवेकी पुरुष भी संसार में रहेगा। तो देखो विवेकी पुरुष वो अंगार रूपी परमात्मा में आसक्त रहता है, फिर वो फंसता, वो जलता। क्यों? परमात्मा कैसा है? रस स्वरूप है परमात्मा में, जो रस है वो रस हमको मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? परमात्मा में से जो रस है वो रस हमको नहीं मिलता है, उस मक्खी को नहीं मिलता जो मक्खी असक्त है, अभिचारी है। तो जैसे वो अंगार में रहने, अंगार रूपी परमात्मा में रहने वाला रस किसको मिलेगा? नहीं जी, विवेकी को। विवेकी पुरुष है ना जो परमार्थ की तरफ चलेगा उसको मिलेगा, और जो संसार में आसक्त रहेगा उसको नहीं मिलेगा। तो परमात्मा में रस है, सो रस सब साधक को नहीं मिलता है। कोई कोई साधक जो है परमात्मा में रहने वाला रस को अधिकारी बनता है। रस वही सह रसम ये लब्ध आनंदी भगवती, क्यों? परमात्मा रस स्वरूप है। जैसे गाते ना मधुरष्टक, एक मधुरष्टक गाती है ना भजन में, अधरम मधुरम बदरम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम श्रोत्र मधुरम हस्तम मधुरम नासिका मधुरम अभिका मधुरम, सब मधुर ही मधुर, मधुर ही मधुर है। जब सब मधुर है तो हमको क्यों नहीं मधु मिलता है? हमको क्यों रस नहीं मिलता है? इसीलिए हम परमात्मा में रहने वाला रस की तरफ जाते नहीं, संसार की तरफ रहने वाला रस की तरफ जाते हैं, इसीलिए वो रस हमको नहीं मिलता है। तो महात्मा कहते हैं अपने मन से, अरे मन तेरे को रस मिलेगा मिलेगा। परमात्मा में रस नहीं है ऐसी बात? परमात्मा के भजन में रस मिलेगा, चल। तो महात्मा पूछता है कब मिलेगा? परमात्मा की तरफ जाने से भजन करने से रस मिलेगा कहते हैं महात्मा मणिराम से, और मणिराम कहते हैं हमको वहां रस नहीं मिलता है, इसका किसकी बात मानी जाए? महात्मा की बात मानी जाए कि मन की बात मानी जाए? महात्मा की बात मानी जाए, क्योंकि महात्मा जो है ना आत्मा आनंद में आत्मरति आत्मक्रीडो आत्मा मथुन आत्मा आनंद में स्थित रहता है। जो महात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद का अनुभूति कर रहा है, आनंद का अनुभूति कर रहा है, वो महात्मा जो बोलेगा तो क्या बोलेगा? आओ मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं, तुम भी करो। बोलते हैं ना संत लोग हंसते हुए सत्संग में आओ, रोते हुए सत्संग में आओ, हंसते हुए जाओ। रोते हुए आते कि नहीं सत्संग में, और जाते कैसे? महात्मा के पास जाते हैं ना रोते रोते, जा महाराज ऐसे ऐसे ऐसे, परमात्मा ऐसे ढंग से बात कर देते तो हंसते हुए जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा के पास जाओगे तो रोते हुए जाओ, और आप वापस जाओगे तो हंसते हुए जाओ। क्यों? परमात्मा के पास रोना होता ही नहीं, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, प्रकाश ही प्रकाश है। इसीलिए मन आपने कहे, महात्मा अपने मन से कहते तू क्षेत्रज्ञ स्वरूप परमात्मा की तरफ क्यों नहीं जाता है? अभी समझ में बात आए क्यों नहीं जाता है? परमात्मा की तरफ क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा है, सब शरीरों में रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, वो परमात्मा के तरफ अपना मन नहीं जाता है। और महात्मा कहते हो परमात्मा के तरफ चल, और मन कहते हैं परमात्मा के तरफ जाएंगे हमको वहां रस नहीं आता भजन में, क्यों जाऊं? तो जहां रस आता है वहां जाना पड़ेगा कि नहीं? तो रस कहाँ आता है? विषयों में रस आता है, संसार में। कहते हैं महाराज संसार में सब रुस है, सब कुछ है संसार में, संसार के बाहर कुछ भी नहीं है। बोले संसार के बाद जो कुछ है तो उनको तुमको नहीं मिलेगा। इसीलिए उपनिषद में नशाम पराया प्रतिभाति वाला प्रमा जनता मित्र मोहे न मूढ़ा मायो को नास्ती पराई थी माने पुनर् पुनर्वसम आवंटते में श्रुति कह दिया है नशाम पराया प्रतिभाति बालम कि बालकों को अज्ञानियों को अभिवेकियों को प्रतिभाति न बा संपराय परलोक संबंधी बातें इनको अच्छी नहीं लगती है। परलोक में जो मिलेगा सुख, परलोक में मिलेगा आनंद, परलोक में मिलेगा शांति, ये बात इनको अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं लगती है? कहे वो लोग कहेगा सब कुछ जो कुछ वह यहाँ है वह नहीं है। मानने के बाद है कि यहाँ है? अभी देखा तो संपत्ति विभाग जो पढ़ते हो गीता के आसुरी संपत्ति वाला कहेगा जो कुछ भी है इधम अध्यम अलब्धम इधम प्राप्त से मनोरथम इधम अस्त इधम अभी में भविष्य पुनर्धनम ये सब यहाँ है। इसी बात को तो नसिकेता ने पूछा था कठोपनिषद में धर्मराज से, वो धर्मराज ये बताओ, वो धर्मराज ये बताओ, मरने के बाद कोई आत्मा रहता है या नहीं रहता है? कोई कहता रहता है, कोई कहता नहीं रहता है, ये ढकोसला क्यों है? हा तो हा नहीं तो नहीं, एक बार बताओ। मरने के बाद आत्मा इस अभी जो दान पुण्य कर रहे हो, अधिक मास गया है, श्रावण मास चल रहा है, ये जो दान पुण्य कर रहे हो इसका फल भोगने वाला रहेगा कि नहीं रहेगा? ये फोकट चला गया, ये जो अधिक मास आया एकादशी व्रत करते हो, आषाढ़ एकादशी दिया, पुण्य कमाया, शिवरात्रि है, जब न जन्माष्टमी है, अधिक मास है, ऐसे जो व्रत त्योहार आदि कर रहे हो किसी लिए कर रहे हो? परलोक के लिए कि इस लोक के लिए? इस लोक जब भूखा मार रहे हो क्या करोगे? ये लोग जब भूखा मार रहे, एकादशी का भूखा है, जन्माष्टमी का भूखा है, शिवरात्रि का भूखा है, श्रावण की भूखा है, भूखा ही भूखा है, कष्ट ही कष्ट उठा रहे, इंद्रियों को तकलीफ दे रहे हो, तो इससे मतलब मिला नहीं? मरने के बाद मिलेगा? हाँ, मरने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सब। नहीं मिलेगा तो क्यों करते? करते जरूर मिलेगा। हाँ, तो ये जो है नसिकेता पूछते मरने के बाद में ये आत्मा रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई कहता है नहीं रहता है, कोई कहता है रहता है, ये ठकोसला का शंका का समाधान कर दो, जाने दे पांच साल के बालक तेरे अंदर क्या है, परलोक संबंधी बातें करता जा, अभी नाक दबाने से पानी में निकलता है, अभी तू आत्मा के विषय में पूछता है, रहने दे इसको, रहने दे, बुढ़े के जैसे बात करता पांच साल के बालक होकर के, डांट दिया नहीं। परंतु नचिकेता ऐसा एक शिष्य था, ऐसा एक जिज्ञासु था, ऐसा एक मुमुक्षु था, वो मानने के तैयारी नहीं था, अपने हमको तो ये बात का समाधान करो, वह रहता है या नहीं रहता है, लोक में ऐसा संसार फैला हुआ है, कोई कहता रहता है, कोई कहता नहीं रहता है, बोले तू क्या मानता है, तू मानता है कि नहीं मानता, रहता है कि नहीं रहता है, बोले नहीं मानता तो मैं तुम्हारे पास आता कैसे, परलोक नहीं मानता, मैं तुम्हारे पास परलोक में जमराज के द्वार में आकर के तीन दिन से सत्याग्रह करके बैठ गया, हंगर स्ट्राइक करके बैठ गया, क्यों यदि नहीं मानता तो तू समाधान कर दे जा, हमसे पूछने की जरूरत क्या है, तू संसार में जाकर के समाधान करके रहता कि नहीं रहता मानने वाला, हाँ? आगे रहेगा कि नहीं रहेगा तू समाधान कर दे। बोले मैं समाधान करने से हमारे बाप भी जब हमारी बात को नहीं माना, दुनिया क्या मानेगा हमारी बात, हमने जो अगर हमारे कहने से को मानता तो हमारे बाप भी हमारे बात को मान लेता, हमारे बाप ही हमारे बात को नहीं मानेगा, दुनिया क्यों मानेगा, तेरे बाप को तेरी बात को नहीं माना, हम क्यों माने तेरी बात को, कोई मानने का तैयार नहीं होगा, तो क्या करना चाहिए, क्योंकि गद्दी पर बैठा हुआ जो व्यक्ति होते हैं ना, जैसे शंकराचार्य है, एक ना एक एक, एक बात निकाल दिया तो दुनिया भर के पेपरों में छप गया है, शंकराचार्य ने ऐसा बोला ऐसा बोला, और हम आकर तो हजार बार बोले तो कोई पूछेगा, नरेंद्र मोदी बोल दिया कि बड़ा ना करो, रात का आठ बजे आ जाए पाकिस्तान पर आक्रमण करो, तो दुनिया में कैसे हलचल होगा, और हम तो बोले आप आक्रमण बर्बाद करके बम गिराओ तो पूछेगा कोई, प्रामाणिक व्यक्ति आप तो वाक्यम प्रमाणम, आप तो पुरुष के वाक्य को प्रामाणिक माना जाता है, जो गद्दी पर बैठता है ना धर्माचार्य, उनकी बात की प्रामाणिक माना जाएगा, जो भी बोले उल्टा बोले सीधा बोले रंग बोले भाई उसकी बात मानी जाएगी, आप बाहर बैठे होगे कितना भी शिक्षा बोलोगे आपकी बात को कोई, इसीलिए मैं तो बोलता जाऊंगा पर हमारी बात को कोई मानेगा नहीं, तुम धर्म के गद्दी पर बैठे हो, तुम बता दो क्या है मामला क्या है, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अस्मात कृता कृतात अन्यत्र भूतात् भव्यात् जत् पश्यसीतद् वद, धर्म से भरे अधर्म से भरे कार्य से भरे कारण से भरे नित्य से भरे अनित्य से भरे, जो वस्तु तुम जानते हो बताओ, और नहीं जानते हो माना करो कि हम नहीं जानते, कितना है जिज्ञासु कैसा होना चाहिए, नचिकेता के जैसे जिज्ञासु होना चाहिए, हो नचिकेता के जैसे जिज्ञासु होना चाहिए, धर्म के विषय में ज्ञान है उसको, अधर्म के विषय में ज्ञान है, कार्य के विषय में ज्ञान है, कारण के विषय में ज्ञान है, नीति के विषय में ज्ञान, अनीति के विषय में ज्ञान है, सब ज्ञान को लेकर बैठा धर्मराज के सामने, धर्मराज को चूंसा करने की मौका नहीं दिया उसने, पर कहना पड़ेगा है नचिकेता तू जो कहते हो ठीक है, आत्मा आत्मा के विषय में संसार में भ्रम भ्रांति फैला हुआ है, कोई कहता है कोई कहता नहीं कहता है, परंतु नशाम पराया प्रतिभाति बालम प्रमाद दंतम वित्त मोहन मूडम अयम लोगो नास्ती पर माने पुनर्वर्षमाबद्धति में, नचिकेता से कहते ये परलोक संबंधी बात है, मूर्ख लोग समझते नहीं मानते नहीं, न सांपराया सांपराय कहते परलोक, परलोक संबंधी बातें ये मूर्खों को सूझता नहीं, मरने की बात नरक है, 26 प्रकार का नरक में डाल रहा हूं मैं, त्रिविधम नरकेश्वर द्वारा हमारा गीता के इसी के ही 16वां अध्याय के अंतिम में आता है, त्रिविधम नरकेश्वर द्वारा नाशनम आत्मना न काम क्रोध तथा लोभ तस्मा त्रयम तजेत, ये नरक का तीन द्वार है, मेरे मुट्ठी में बार बार आता है, मैं बार बार उसको नरक में डालता हूं। किसको? वो शास्त्र को न मानने वाला को। प्रमाद जनता मित्तम ये नमोरम क्यों नहीं मानते? का प्रमाद ही बन गया। सारे संसार प्रमाद रूपी निद्रा से सोए हुए, सोए हुए जागने पर भी जागता नहीं। कितने भी ढिंडरा बैठो कुंभ करने के लिए कान के सामने जा करके, अरे भाई सुनो सुनो, धर्म की बात सुनो, आज एकादशी है, उपवास रखो, परंतु कोई रखेगा क्यों? अरे भाई मरने के बाद नरक जाना पड़ेगा, अरे भाई मरने के बाद जमराज जमदूत आएगा, ले जाएगा जमील के इसे पकड़ करके, डरोगे नहीं, उस समय क्या करोगे? आप इसे सुनो। पर कोई सुनता? देखा जाएगा उस समय आएगा तो। वो है ना, संसार में तीन प्रकार के मनुष्य रहता है, तीन प्रकार के, प्रत्युत्पन्न मति, अनागत विजाता और दीर्घ सूत्री। कितना? कौन कौन सा? अनागत विजाता, दीर्घ सूत्री, प्रत्युत्पन्न मति, ये तीन प्रकार के मनुष्य रहता है। तो नीति शास्त्र दृष्टांत देकर हमको समझाते हैं। एक छोटा सा जलाशय है, जलाशय, वो जलाशय में तीन प्रकार के मछली रहती है, मछली। तो एक का नाम रख दिया नीति शास्त्रकार ने अनागत अभिजाता, एक का नाम रखा दीर्घ सूत्री और एक का नाम प्रत्युत्पन्न मति, प्रत्युत्पन्न मति। ये तीन प्रकार के मछली रहती है मिलकर के। तो एक दिन एक मच्छी मार आया तो देख रहा है जल में पानी में है मच्छी है कि नहीं, गौर गौर करके देखा तो उनमें मच्छियों ने देखा कि ये मच्छी मार रहा है, हम लोग को देख रहा है, आज उसके हाथ में जाल नहीं है, कल जाल लेकर आएगा, जाल मारेगा तो हम सब फंस के मर जाएंगे, इसीलिए आज इससे बचने का उपाय निकाल लो। तो उसमें जो प्रत्युत्पन्न अनागत विजाता था उसने कहा, अरे बचने अभी से बचने का उपाय ढूंढ लो, विपत्ति आई नहीं, आने से पहले से ही विपत्ति से बचने का उपाय निकाल लो। तो उसने कहा, दूसरा ने कहा, अरे कल आने तो देखा जाएगा, आज इतना जल्दी क्या है? बोले तुम लोग रहो मैं जाता हूं। तो कूद करके बड़े जलाशय में चला गया। कौन? अनागत विजाता। अनागत में अभी विजाता आई नहीं, कर्म आया नहीं, आएगा कल आएगा, पर आज से बचने का उपाय ढूंढ लिया उसने, छोटा जलाशय से बलाशय में चला गया। तो दूसरा दिन जाल वाला आ रहा है जाल लेकर के हाथ में, तो दूसरा दिन मछलियों ने देखा, अरे वो तो कह रहा है जाल लेकर के, अभी क्या किया जाए? तो प्रत्युत्पन्न मति मारे तत्काल बुद्धि, जिसकी बुद्धि तत्काल काम करे ना, ऐसे विपत्ति आ गई है, वो विपत्ति से बचने का उपाय ढूंढ लो, तो तुरंत जो है ना उपाय ढूंढ लेता है। बहुत से बुद्धिमान होते हैं ना, ये जैसे गाड़ी लेकर के जा रहा है, सामने तस्कर खड़ा है अथवा आतंकवादी खड़ा है, तो उसे बचने के लिए उपाय ढूंढ लेता है तत्काल, और नहीं तो जाओ देखा जाएगा सामने आया तो क्या करेगा? ठाए 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 कर देगा, गया राम राम सेट हो गया। परंतु प्रत्युत्पन्न होती वाला बचने का उपाय ढूंढ लेता है। तो उसने कहा, भाई वो आ रहा है मच्छी मार, अभी चलो जब बड़ा जलाशय में चलो। तो उसने तो कूद कर गया, दूसरा कहने लगा दीर्घ सूत्री, अरे आने दो ना, क्या होगा देखा जाएगा, जाल फेंक दो ना, क्या होगा, जाल फेंकेगा क्या होगा। तो उसने आया जाल फेंका, जाल में फंस करके पकड़ा गया, नहीं राम नाम सत हो गया, पकड़ गया तो बच जाता है राम नाम सत। तो ठीक है, इसी प्रकार समझ लेना, ये संसार रूपी एक तालाब है, ये संसार रूपी तालाब है, हम तीन प्रकार के मच्छी है, एक अनागत विजाता, एक दीर्घ सूत्री और एक प्रत्युत्पन्न मति। तो इसमें जो है अनागत विजाता जो मनुष्य है बचपन से, अरे जमराज रूपी जो है ना मच्छी मार, माया रूपी जाल फेंकेगा, जाल कौन फेंकता है? जमराज फेंकता है कि नहीं? जमराज जैसे मच्छी मार जाल फेंकता है, जाल फेंकता है ना, मच्छी मार के दूर दूर जो रहता है वो मच्छी जाल में फंसता है। जाल में कौन सा मच्छी फंसता है? मच्छी मार के पैर के अगल बगल से दूर दूर रहेगा ऐसे फेंकता है ना, तो मच्छी कौन सा मच्छी फंसता है जाल में? जो दूर वाला है, पास वाला फंसेगा? तो ऐसे मच्छी मार जो है जमराज जाल फेंका, तो प्रत्युत्पन्न या अनागता बिता था तो देखा जाल वाला आ रहा है, अर्थात बुढ़ापा आएगा, जमराज आएगा। अभी शरीर मिला है तो कभी ना कभी बूढ़ा होगा, पहले से मृत्यु से बचने का उपाय तो बचपन से शादी अथवा जवानी से ही क्या करेगा, परमार्थ में जमराज के जाल से छूटने का उपाय ढूंढ लेगा। नहीं तो दूसरा जो मच्छीमार या मच्छी है या मच्छी है प्रत्युत्पन्न होती, वो देखेगा अभी जमराज आ रहा है, बाल सफेद हो रहा है, दांत गिर रहा है, दर्द कर रहा है, अभी कान में कना कम सुना देता है, घुटने ठीक नहीं देता है, घुटने कांपता है, हाथ पकड़ हाथ कांपता है, दर्द करता है, अभी जल्दी से जल्दी क्या करो, ये बुढ़ापा से जमराज के जाल से बचने का उपाय ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? ढूंढा ना। हाँ, ये सत्संग रूपी तालाब में बैठोगे ना तो जमराज यहां नहीं आएगा, बाहर से भाग जाएगा, बाहर से भाग जाएगा, यहां नहीं आएगा, याद रखना। यहां वाला को छोड़ देगा, यहां वाला के लिए जाल फेंकेगा नहीं, हो सब जाल लेकर चला जाएगा। हाँ, तो परमार्थ में लग जाता है, साथ सत्संग में चले जाएगा, भजन में साधन में भजन में सब जाएगा। और जो दीर्घ सूत्री है, आने तो बुढ़ापा देखे जाएगा, भजन पाठ में करेंगे तो बुढ़ापा आते आते जमराज जाल फेंकता है, उसमें फंस करके तो मारा जाता है। ये तीन प्रकार के मनुष्य संसार में रहता है, याद रखना। तीनों प्रकार के मनुष्य जो है ना, ये भगवान के भजन करना चाहता है कि नहीं चाहता है? तीनों का नहीं कहेगा, दीर्घ सूत्री नहीं चाहेगा। हाँ, तो इसीलिए महात्मा कहते हे मन, तू क्षेत्रज्ञ स्वरूप परमात्मा की तरफ क्यों नहीं जाना चाहता है? तो मन कहता है क्षेत्रज्ञ स्वरूप परमात्मा तो हमारा कोई लगता कोई संबंधी नहीं है, जो संबंधी होगा उसके पास तो जाएंगे ना, तो संबंधी कौन है? संसार विषय संबंधी संसार है, तो उसके तरफ जाएंगे। हरि ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं